चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री राधा रास बिहारी सीताराम लक्ष्मण गौर निताय की शील प्रभुपाद की निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि भो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायः शिवभद्रेशो नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 25 श्लोक संख्या 21
पंच शीर्षा अहिना गुप्ताम प्रतिहारेण सर्वतः अन्वेषमाणाम ऋषभम अप्रौढाम कामरूपिणी पंचशीर्षाहिना गुप्ताम प्रत्याहारेण सर्वतः अन्वेषमाणाम ऋषभम अप्रौढाम कामरूपिणी पंचशीर्षाहिना गुप्ताम प्रतिहारेण सर्वतः अन्वेषमाणं ऋषभम् अप्रौढां कामरूपिणीं पञ्चशीर्षाहिना गुप्तां प्रतिहारेण सर्वतः अन्वेषमाणं ऋषभम् अप्रौढां कामरूपिणीं
पढ़िए हरे कृष्ण पढ़िए
पञ्चशीर्षाहिना गुप्तां प्रतिहारेण सर्वतः अन्वेषमाणं ऋषभम् अप्रौढां कामरूपिणीं
Thank you.
माताजी शब्दार्थ पंच पांच शेरसा सिर अहिना सर्प द्वारा गुप्ता रक्षित प्रतिहारेण अंगरक्षक सर्वत चारोर अन्वेषमाणाम खोज करती हुई ऋषभाम पति अप्रौढ़ाम भोली भाली किशोरी किशोरी कामरूपिणे अत्यंत आकर्षक। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की वह स्त्री पांच फनों वाले एक सर्प द्वारा चारों ओर से रक्षित थी। वह अत्यंत सुंदरी तथा तरुणी और उपयुक्त पति खोजने के लिए परम उत्सुक प्रतीत हो रही थी। लोग दोहराएंगे, वह स्त्री पांच फनों वाले एक सर्प द्वारा चारों ओर से रक्षित थी। वह अत्यंत सुंदरी तथा तरुणी और उपयुक्त पति खोजने के लिए परम उत्सुक प्रतीत हो रही थी। उपयुक्त पति खोजने के लिए परम उत्सुक प्रतीत हो रही थी। फिर एक बार अनुवाद पढ़ते हैं। वह स्त्री पांच फनों वाले एक सर्प द्वारा चारों ओर से रक्षित थी। वह अत्यंत सुंदरी तथा तरुणी और उपयुक्त पति खोजने के लिए परम उत्सुक प्रतीत हो रही थी। तात्पर्य, जीव के शरीर के भीतर प्राण रूप पांच प्रकार के वायु प्राण अपान बयान समान तथा उदान कार्य करते हैं। प्राण की तुलना सर्प से की गई है क्योंकि वह केवल हवा पीकर रहता है। वायु द्वारा ले जाए गए प्राण को प्रतिहार या अंग रक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। प्राण के बिना कोई एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। निसंदेह सारी इंद्रियां प्राण के अधीन कार्य करती हैं। वह स्त्री जो बुद्धि की प्रतीक है पति की तलाश में थी। इसे पता चलता है कि बुद्धि चेतना के बिना कार्य नहीं कर सकती। सुंदर स्त्री जब तक उपयुक्त पति द्वारा रक्षित नहीं होती तब तक वह व्यर्थ है। बुद्धि को सदैव नवीन रहना चाहिए, इसलिए अप्रौढ़ाम तरुणी शब्द प्रयुक्त हुआ है। भौतिक भोग का अर्थ है रूप रस गंध शब्द तथा स्पर्श के लिए बुद्धि का प्रयोग। भौतिक भोग का अर्थ है रूप रस गंध शब्द तथा स्पर्श के लिए बुद्धि का प्रयोग। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की वह स्त्री पांच फनों वाले एक सर्प द्वारा चारों ओर से रक्षित थी। वह अत्यंत सुंदरी तथा तरुणी और उपयुक्त पति खोजने के लिए परम उत्सुक प्रतीत हो रही थी। इस श्लोक में जो स्त्री का वर्णन मिलता है उस पुरंजन नामक राजा के जो स्त्री है वो बुद्धि है। बुद्धि को ही स्त्री कहा गया है। तो जो दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सद्बुद्धि और एक कुबुद्धि। जो विषय वासनाओं की ओर ले जाती है वो कुबुद्धि है। जो पुरंजन की पत्नी पुरंजनी है। पुरंजन कौन है? पुरम का अर्थ होता है देह और जन का होता है जीवात्मा। पुरम और जन दो शब्द को अलग करिए तो हम सभी पुरंजन हैं। जो पुरम में इस पुरी में निवास करते हैं जिसमें नौ द्वार हैं। इस राजा के नगर में नौ दरवाजे हैं। प्राय राजा लोग जहां रहते हैं वो बहुत सारा गेट होता है, इमरजेंसी गेट। किला में बहुत गेट होता है, सुरंग भी होता है कि कभी शत्रु अटैक करेंगे तो राजा बचकर निकल सकता है। तो इस देह को पुरम कहा गया है और इसमें जो जीवात्मा है उसको जन कहा गया है। पुरम जन, इसी को पुरंजन नाम के राजा से नारद मुनि इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और वास्तव में हम सभी पुरंजन हैं क्योंकि इस पुरी में हम लोग रहते हैं। शरीर एक पुरी है और जिसमें हम सभी जीवात्माएं रहते हैं। तो सबके लिए कहानी है, हम सब पुरंजन हैं। प्राचीन बरही को नारद जी उसी की कहानी को बता रहे हैं एक पुरंजन राजा के नाम से। प्राचीन बरहिषत वेद के कर्मकांड में बहुत आसक्त थे और यज्ञ में कर्मकांडी विधियों से पशुओं का वध करते थे। इतने पशुओं का वध होता था कि जिससे वो यज्ञ का जो उद्देश्य है वो खत्म हो गया था। यज्ञ में उसी पशु को वध किया जाता है जो रुग्ण है, वृद्ध है, और मंत्रों के द्वारा उस पशु को नया जीवन प्राप्त होता है। ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है कि जो पशु यज्ञ में बलि दिए जाते हैं उनको मनुष्य जीवन प्राप्त होता है और वर्तमान में नवीन पशु जीवन प्राप्त करते हैं। जो भी पशु की बलि होती थी वो पशु नया जीवन प्राप्त करते थे। और जो क्षत्रिय युद्ध में युद्ध करते हुए वीरतापूर्वक मारे जाते हैं उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। तो यज्ञ में जो पशु बलि का जो विधान है पशु को उस योनि से ऊपर ले जाने के लिए, मनुष्य देह में ले जाने के लिए, लेकिन राजा प्राचीन बरही का उद्देश्य अपने उद्देश्य से भटक गए थे और पशु भी यज्ञ में बहुतायत पशुओं की हत्या नहीं होनी चाहिए। यज्ञ में एक पशु का बलि का आदेश है जो यज्ञ के सफलता को साबित करता है कि यज्ञ सफल है या नहीं। जब भी यज्ञ संपन्न होता था तो उसमें पशु बलि जैसे अश्व का या गाय का जब बलि होता था तो पशु पुनः नए जीवन में आ जाते थे। तो उसे यज्ञ को प्रमाणित किया जाता था कि यज्ञ जो है अपने सही रूप में संपन्न हुआ है। तो प्राचीन बरही जो एक बहुत प्रख्यात राजा थे जो ध्रुव महाराज के वंश में आए हैं, ध्रुव के अंग के बेन के पृथु और पृथु के अंतर्धान और अंतर्धान के पुत्र जो है हबीरधान। हबीरधान की दो पत्नियां थीं, एक पत्नी से ये प्राचीन बर्हिषत हुए थे। प्राचीन बर्हिषत इतने यज्ञ किए थे कि पृथ्वी कुशों से भर गई थी। यज्ञ में प्राय कुश की जरूरत होती, कुशासन के लिए और भी यज्ञ में दूसरे कार्यों के लिए, जैसे जो हाथ में पैती बनाते हैं वो भी कुश का होता है, जल को शुद्ध करने के लिए भी कुश की जरूरत पड़ती है। कुश बहुत पवित्र माना जाता है। कुश क्या है? जब भगवान बराह अवतार में पृथ्वी का उद्धार किए थे तो पृथ्वी को रसातल से जब ऊपर ले आए तो ऊपर पृथ्वी को स्थापित करने के बाद अपने शरीर के अंग को झाड़े तो उनके शरीर में जितने बाल थे और उस बाल में जितने भी पानी थे, तो पानी शरीर को झाड़ने से जहां जहां पानी की बूंदें गईं उससे कुश ग्रास उत्पन्न हुआ। इसलिए भगवान वराह देव के शरीर से उसका संबंध है। इसलिए कुश का वैदिक क्रियाकलापों में बहुत महत्व दिया जाता है। किसी वस्तु में कुश ग्रास डालने से उस वस्तु की पवित्रता बरकरार रहती है। इसलिए प्राय चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण तो खाद्य पदार्थों में कुश ग्रास डाला जाता है या भजन करने के लिए कुश के आसन पर लोग बैठते हैं। तो प्राचीन बरही इतने यज्ञ किए थे कि पृथ्वी को कुश के घास से पाड़ दिए थे और एक यज्ञ खत्म होता फिर दूसरा यज्ञ करते थे। उनका ऐसा रूटीन था कि एक खत्म होने में फिर दूसरा यज्ञ, फिर जैसे क्रमबद्ध करते थे। और पशुओं की बलि बहुत होती थी, इतने पशु मारे गए थे कि मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी से कि हे विदुर, यज्ञ में प्राचीन बरही इतने पशुओं का वध किया था कि पशु भी इंतजार कर रहे थे राजा को मारने के लिए। जैसे प्रकृति का नियम है, प्रभुपाद जी लिखते हैं लॉ ऑफ नेचर में कि जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है लेकिन उसका विधि है, कौन जीव किस जीव का भोजन है, जो खाद्य श्रृंखला है। जैसे जंगल में शेर है वो हरिण को शुकर को खा जाता है और शुकर दूसरे छोटे छोटे जीवों को खा जाते हैं, उन छोटे छोटे जीवों को दूसरा जीव खा जाता है। जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सर्प जो है चूहे को खा जाता है, चूहा जो है सर्प का खाद्य है और सर्प को नेवला खा जाता है और नेवले को सियार खा जाता है, लोमड़ी खा जाती है और लोमड़ी को चीते खा जाते हैं, तेंदुए खा जाते हैं। ऐसे जीव एक जीव को खा रहे हैं, हम भी जीव को खाते हैं, जैसे साग सब्जी अन्न फल दूध इसमें भी जीव है, दूध में भी जीव हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, दही में भी हैं, तो हम भी जीव को खा रहे हैं। जीवन के लिए हम दूसरे जीव को खा रहे हैं। जैसे जल में बड़ी बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, या जल में और भी जो सूक्ष्म वायरस हैं जो बैक्टीरिया हैं उनको मछलियां खा जाती हैं, पानी के अंदर जो बत्तख है वो भी जीव को खाता है, या छिपकली दीवार पर है मक्खी को मच्छर को और भी जो पतंगे उनको खा जाती है।
और छिपकली को सर्प खा जाते हैं। घर में कभी कभी सर्प आ जाते हैं तो छिपकली को खा जाते हैं। तो जीव एक जीव का भोजन है, लेकिन उसकी विधि जो है वो विधि के अनुसार खाता है। जैसे बाघ अगर किसी जीव को मारता है तो पाप नहीं है, क्योंकि उसका वही आहार है। जैसे गरुड़ जी मछली खा रहे थे जमुना जी में, तो सौ भरी सांप दे दिए। वो सांप देना सभरी ऋषि के लिए उचित नहीं था, क्योंकि उनका वही खाद्य है, वही उनका फूड है। गाय को घास खाना सैद्धांतिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है, क्योंकि गाय घास खाती है। अगर गाय मांस खाने लगे तो पाप है। प्रकृति से उसको आहार प्रदत्त है कि वो घास खाएगी। मनुष्य का आहार जो है शाक सब्जी फल फूल ये सब है, लेकिन जब मनुष्य प्रकृति के नियम का अतिक्रमण करता है, दूसरे जीवों को मारकर खाने लगता है, तो घोर पाप है। तो प्राचीन बरहिषत जो वेदों के कर्मकांड के सिद्धांत में बहुत आसक्त थे और कर्मकांड के द्वारा पशु बलि यज्ञों में दे रहे थे, लेकिन वो सिद्धांत को भूल गए थे कि पशु बलि का सिद्धांत क्या है। यज्ञ में पशु बलि देना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि उन पशुओं को निरीह जो अमुक पशु हैं उनको अगले जीवन में ऊंच जोनियों में भेजना है, उद्देश्य है। तो यहां पर यह कहा गया कि राजा पुरंजन के साथ जो एक स्त्री है, स्त्री मतलब बुद्धि, बुद्धि को ही स्त्री कहा गया है, और जीवात्मा को पुरंजन कहा गया है, और जीवात्मा के साथ प्राण के साथ पंच प्राण वायु हैं, जो स्त्री को बुद्धि के चारों तरफ सुरक्षा कर रहे हैं। प्राण अपान बयान उदान समान ये पांच प्राण वायु हैं जो अंगरक्षक की तरह हैं। कैसे अंगरक्षक हैं? ते पांचों पांच उस सर्प के फन हैं। जैसे सर्प जो है, बहुत सारे सर्प के कई फन होते हैं, मुख होते हैं, जैसे कालिये के 101 फन थे। आज भी बहुत सारे ऐसे सर्प पाए जाते हैं जंगलों में, या साउथ अफ्रीका में, या महाराष्ट्र के जो सतपुड़ा के जंगल हैं, बहुत घने जंगल हैं, उसमें कई फन वाले सर्प पाए जाते हैं। कुछ ऐसे सर्प हैं जिनका दोनों तरफ फन होता है, माने मुख होता है, दुमुही सर्प, दोनों तरफ मुंह होता है। कुछ ऐसे समुद्री सर्प हैं जो उनके भी कई मुख होते हैं, कई सिर होते हैं। तो पांच सिर वाला जो सर्प है, जो उस स्त्री की रक्षा कर रहा है, बुद्धि की, बुद्धि चेतना पर आधारित है, माने जीवात्मा पर आधारित है बुद्धि। जीव के बिना चेतना या बुद्धि नहीं रह सकती है, और उसकी सुरक्षा के लिए पांच मुख वाला सर्प पंच प्राण वायु है। त्यां प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई स्त्री जो बुद्धि की प्रतीक है, वो स्वतंत्र कार्य कर रही है। जब स्वतंत्र रूप से कार्य करती है तो अपने पति के तलाश के लिए इधर उधर घूमती है। स्वतंत्र रूप से बुद्धि का सहयोग जो है उसके पति प्राण से होना चाहिए, जीवात्मा से होना चाहिए। जीव के शरीर के भीतर प्राण पांच प्रकार के वायु, प्राण अपान बयान उदान समान कार्य करते हैं। प्राण की तुलना सर्प से की गई है, क्योंकि वह केवल हवा पीकर रहता है। वायु द्वारा ले जाए गए प्राण को प्रतिहार या अंगरक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। प्राण के बिना कोई एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। निस्संदेह सारी इंद्रियां प्राण के अधीन कार्य करती हैं। पांच प्राण वायु जो है जीवात्मा है, जिसको सर्प से उपमा दी गई, सर्प से उसका रूपक दिया गया है, और वो हवा पीकर रहता है। सर्प बहुत समय तक हवा पर रह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सर्प जो है बिना खाए भी बहुत दिन तक रह सकता है, हवा पीकर भी रहता है। तो जो ये वायु है, पांच प्राण वायु शरीर के लिए बहुत जरूरी है, चेतना के लिए जरूरी है। यहां जो रूपक में जो उदाहरण नारद जी देते हैं कि किस तरह से इस देह में पांच प्राण वायु वो बुद्धि को सुरक्षित करता है, और बुद्धि कभी कभी उससे अलग होकर कार्य करने लगती है स्वतंत्र रूप से। तो जो पुंसली स्त्री होती है एक पति के साथ नहीं रहती है, एक पति दूसरे पति ऐसे घूमती रहती है। जैसे सुपनखा जो है जंगल में अकेली घूम रही थी, उसका उदाहरण यहां सटीक है। बुद्धि जो एक सुंदर स्त्री से जिसकी उपमा दी गई है, वो स्वच्छंद घूम रही है पति के तलाश में, एक पति से संतुष्ट नहीं है दूसरे पति। तो जो बुद्धि कृष्ण भावना भावित नहीं है, प्रभुपाद जी लिखते हैं जो बुद्धि भौतिक देहात्म स्तर पर है, तो वो जीव को बंधन का कारण बनाती है। देहात्म स्तर पर वो देह को ही सर्वस्व मानती है, और भौतिक भोग की उपलब्धि को ही जीवन का लक्ष्य मानती है। तो बुद्धि जो है कुबुद्धि है, वही बुद्धि पुरंजन की पत्नी है, माने जीवात्मा, जीवात्मा की पत्नी बुद्धि है। जो बुद्धि उसको अनेक विषयों की ओर ले जाती है, रूप रस गंध स्पर्श, कान जो है शब्द की ओर जाते हैं, जिह्वा जो है रस के लिए जाते हैं, नाक जो है सुगंध गंध की ओर जाते हैं, स्पर्श इंद्रियां स्पर्श करने के लिए जाती हैं। तो पांच इंद्रियां इसको कहीं कहीं घोड़े से भी उपमा दिया गया है। जैसे कहा कि ये शरीर जो है रथ है, पांच इंद्रियां घोड़े हैं, और मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, और जीवात्मा इसमें यात्रा कर रहा है। तो जो घोड़े, जो पांच इंद्रियां हैं घोड़े हैं, जब विषय के मार्ग पर कुमार्ग पर जाते हैं तो जीव को बंधन बनता है, दुखी होता है। जैसे रथ में घोड़े हैं जब अपने रास्ते से भटक जाते हैं, राजमार्ग से हाईवे से नीचे चले जाते हैं, तो क्या होता है, पलटी हो जाता है। तो विषय के गर्त में इंद्रियां ले जाती हैं, इंद्रिय रूपी घोड़े इस पुरंजन को विषय के गर्त में डाल देते हैं। जीव फैले विषय सागर, शरीर विद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल, जीव फैले विषय सागर, जीव को विषय के सागर में ढकल देती है। तो हम सभी पुरंजन हैं, पुरंजन के इतिहास है, जीवात्मा का इतिहास नारद जी बता रहे हैं कि जीव किस तरह से इस पुरी में रह करके और बुद्धि दुर्बुद्धि के संग में विषय के ओर जाता है, अपने सब इंद्रियों से विषयों में गिर जाता है और अपने अस्तित्व को खो देता है। जीव का वास्तविक अस्तित्व है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब जीव यह समझ जाता है कि हमारा नित्य संबंध भगवान से है, तो ये गर्त में गिरने से बच जाता है, संसार सागर में से पार हो जाता है। लेकिन जब अपने स्वरूप को भूल जाता है और मान लेता है कि मैं इस शरीर का राजा हूं, भोक्ता हूं, जैसे राजा मान लेता है कि राज्य का मैं भोगता हूं, तो उश्रृंखल होकर के धन का दुरुपयोग करता है, इंद्रिय तृप्ति में लगाता है और प्रजा से अन्यायपूर्वक कर वसूल करता है, टैक्स वसूलता है और उस कर से इंद्रिय तृप्ति करता है, तो राजा जो है कुमारगामी हो जाता है और धर्म कर्म से नष्ट हो जाता है, फिर नरक में चला जाता है। जो राज्य जो है प्रजा के अनुकूल कार्य नहीं करता है वो अंत में नरक में जाता है। तो उसी तरह इस शरीर का राजा आत्मा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शरीर का स्वामी आत्मा भी है, लेकिन अपने स्वामित्व का जब दुरुपयोग करने लगता है, मान लेता है कि मैं राजा हूं, तो शरीर को विषय भोगने में लगा देता है, विषय भोगने में लगा देता है, तो वो फिर 84 लाख योनियों में फिर वो चक्कर लगाता है। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजा, राजा के ही कहानी को सुना रहे हैं, प्राचीन बरहिषद के कहानी को ही दूसरे राजा के रूप में कल्पित पुरंजन राजा के नाम से, पुरंजन कोई नहीं है, कल्पित किया गया कि ये पुरंजन राजा है, उसकी नगरी है, लेकिन वो उसी की कहानी को बता रहे हैं। ये सब पर लागू है कहानी, ये कल्पना से कहानी गढ़ा गया है। कोई पुरंजन राजा नहीं है, कोई रानी नहीं है, कोई शहर नहीं है, लेकिन शरीर के अनुसार ही और जीव को ही पुरंजन कह करके, कहानी को कह कर नारद जी प्राचीन बरहिषद को ज्ञान देते हैं कि देखो तुम इस शरीर का राजा मानते हो या इस साम्राज्य का राजा मानते हो और विषय में जो पड़े हो, निर्दोष पशुओं का वध कर रहे हो, ते पशु भी तुम्हें मारने वाले हैं और ये पशु जो यज्ञ में मरे हैं वो तुम्हें इंतजार कर रहे हैं कि जब तुम आओगे तो फिर तुम्हें मारेंगे। जैसे प्रकृति का नियम है, जो किसी को मारता है तो फिर वो उसको मारता है। जैसे कोई बकरा काटता है तो फिर बकरा अगले जीवन में उसको काटता है, जैसा का तैसा। प्रकृति में भी ये नियम है। जैसे मांडव्य ऋषि एक तितली के में कांटा चुभो दिए थे, तो उस अपराध के चलते उनको सूली पर चढ़ना पड़ा, उनके शरीर में सूल लगाया गया था, लेकिन वो बाल्य जब नाबालिग थे तब वो ऐसा किए थे। ऐसा कहा जाता है कि जो नाबालिग अवस्था में 12 वर्ष में नाबालिग अवस्था होता है, 12 वर्ष में जो अनजाने में कोई गलती करता है तो क्षम्य है। पोट में भी कोई बच्चा किसी को ये कर देता है तो उस पर नियम लागू नहीं होता है। कोई छोटा बालक किसी को अनजाने में या कैसे मार देता है तो मुक्त हो जाता है दोष से। तो मांडव्य ऋषि बचपन में एक तितली को कांटा चुभो दिए थे, तो उसके बदले में उनको सूली पर चढ़ना पड़ा। तो इसका जब कोर्ट में जब जस्टिस सुनाया गया, उनको पनिशमेंट भी दिया गया, तो दोबारा वो रिडायर किए। लोग केस डायर करते हैं ना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, तो केस को आगे बढ़ाए, यमराज के पास गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट है फेल हो गया। बोले कि इस दंड के लिए, इस ये दंड मुझे किस पनिशमेंट के लिए दिया गया था? यमराज बोले कि आप बचपन में ऐसा ऐसा किए थे। तो बोले कि उस समय का अपराध क्षम्य है, शास्त्र में लिखा गया कि जो बाल अवस्था में गलती करता है तो क्षम्य हो जाता है। तो गलत डिसीजन दिए थे यमराज, तो उसके चलते उनको अभिशप्त होना पड़ा। तो हर प्रकृति का ये नियम है कि जो हम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसका फल बनता है, क्रिया का प्रतिक्रिया जो है होता है, उस प्रतिक्रिया के अनुरूप आपको फल मिलता है। लोग कहते हैं कि अगर आप आम का पेड़ लगाते हैं तो आम का फल उसे होता है, जो फल आप आरोपित करते हैं वही फिर पुष्पित और फल्लवित होता है। अगर बबूल का पेड़ लगाते हैं तो उसमें आम का फल नहीं प्राप्त होता है। तो जो हम वर्तमान में कर रहे हैं वो हमें भविष्य में मिलता है। वर्तमान जो है भविष्य का निर्माण करता है। वर्तमान में मान लीजिए कोई बहुत परिश्रम कर रहा है धन कमाने के लिए, बहुत परिश्रम कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, तो उसे भविष्य में प्राप्त होता है। वर्तमान में कोई शराब पी रहा है तो भविष्य में उसको दुखी होना पड़ता है। आज भी अब वर्तमान में भी देखिए जो आदमी करता है उसको वही भरना पड़ता है। वर्तमान में कोई चोर है, चोरी कर रहा है तो भविष्य में उसको जेल में जाना पड़ता है। तो वर्तमान भविष्य का निर्माण करता है और इस जन्म में जो हम करते हैं वो अगले जन्म में अगला जीवन हमें प्राप्त होता है। वर्तमान में हम जो कर्म कर रहे हैं उसी के अनुसार अगला जीवन हमें प्राप्त होता है। तो राजा को नारद जी कह रहे हैं कि हे प्राचीन बरही, तुम इतने पशुओं को मारे हो कि तुम्हें भी पशु योनि में जाना पड़ेगा और 84 लाख योनियों के चक्कर से तुम्हें जो जिन पशुओं के साथ जैसा बर्ताव किए हो वो तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। तो प्राचीन बरही डर गए बिल्कुल, और फिर इतना डर गए कि उनको वैराग्य हो गया प्राचीन बरही को। फिर नारद जी से उपदेश लेकर के जंगल में जाकर भजन किए, ये आगे कथा आएगी। तो पुरंजन और पुरंजनी, हम सभी पुरंजन हैं और हमारी बुद्धि पुरंजनी है। असत बुद्धि के संग में जब पुरंजन जीवात्मा जब जाता है तो नरकगामी होता है। जो अब वही पुरंजन वही जीवात्मा जब सत बुद्धि कृष्ण भावना भावित बुद्धि का संग करता है तो विषय से संसार से मुक्त हो जाता है। तो हम सब पुरंजन हैं, इस पुरी में निवास कर रहे हैं। हर जीवात्मा पुरंजन है। इस इतिहास से जीव को सद्मार्ग की ओर लाया जाता है। जैसे राजा प्राचीन बरहिषद को नारद जी उसको उसके ज्ञान को ठिकाने पर ला दिए कि तुम वेद का जो वेद का क्या उद्देश्य है, वेद का उद्देश्य है असतोमा ज्योतिर्गमय, असत से हमें सत पर आना है, अज्ञान से हमें ज्ञान में स्थित होना है। नारद जी बोले कि तुम तो घोर पाप में घिर गए हो, निरीह पशु निर्दोष पशुओं का वध कर रहे जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। पशु यज्ञ में बलि करने का भी उद्देश्य होता है, किस परिस्थिति में किस पशु को यज्ञ में बलि दी जाए और बलि सफल है, बलि जो दिया गया उचित है या नहीं है। जैसे ही पशु को बलि दी जाती है अगर उसका जीवन बदलता नहीं है तो उस पर पाप लगता है। जैसे हम किसी को मारते हैं पाप लगता है, वैसे ही पाप लगता है। पशु को बलि देने पर अगर उनका जीवन नहीं मिलता है नया जीवन तो समझिए कि वो पाप है। वो विधि के अनुसार उसका जीवन बदलता है और उसमें थोड़ा भी यज्ञ में त्रुटि होता है तो पशु मारना पाप के समान है। जैसे हम किसी को मार देते हैं, मनुष्य को मारते हैं, जेल जाना पड़ता है। तो नारद जी बोलते हैं तुमने बहुत पशुओं का वध किया है जिसमें कुछ अविधि पूर्वक भी मारे गए हैं, तो ये सब पाप तुम्हें भोगना होगा। शरीर में दो प्रकार के फल लगते हैं। ये शरीर को श्वेता श्वेतर उपनिषद में वृक्ष कहा गया है। इस वृक्ष में दो पक्षी हैं, एक आत्मा और परमात्मा। एक फल को खा रहा है और एक देख रहा है, दृष्टि साक्षी मात्र है।
और एक भोक्ता है, जीवात्मा भोग रहा है। शरीर में कौन से फल लगते हैं? पाप पुण्य के दो फल लगते हैं। जो भी हम पाप पुण्य करते हैं वो फल के रूप में हमें प्राप्त होता है और हम उसको भोगते हैं। जीव अपना ही कर्म फल को भोगता है और उसी कर्म के फलों के अनुसार 84 लाख जोनियों में चक्कर लगाता है। संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। स्वकर्म भी माने अपने कृत पूर्व कृत कर्म से या वर्तमान कृत कर्म से जीव अनादि काल से संसार चक्र में घूम रहा है। संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। स्वकर्म भी, स्वकर्म भी स्पष्ट करता है कि जीव खुद ही कारण है। वो बंधन का और मोक्ष का खुद कारण है। अगर कृष्ण भावना चेतना को प्राप्त करके कार्य करता है तो मुक्त हो जाता है, और भौतिक स्तर देहात्म बुद्धि पर काम करता है तो संसार के असह्य दुखों में चला जाता है। इंद्रियां उसको विषय सागर में फेंक देती हैं। तो पुरंजन का इतिहास जीव को विशेष से पाप से छुड़ाने के लिए और कृष्ण भावना में लगाने के लिए है। हर जीव अपने इंद्रियों से अपने देह से आ सकते हैं। हर प्राणी देह में आ सकते हैं और देह के आवश्यकता के अनुसार पाप पुण्य करते रहता है। कुछ अनजाने में करता है, कुछ जानकर करता है, लेकिन वही जब देह में बिल्कुल आसक्त हो जाता है तो देह को परिवार को चलाने के लिए बहुत पाप करता है। बहुत पशुओं को मारता है, चोरी करता है, जो नहीं करना है वो भी करता है। जैसे मृगारी, मृगारी अपने परिवार के लिए पशुओं का वध करता था। वो देहात्म बुद्धि पर था, देह को ही सब कुछ मानता था। वो ये नहीं जानता था कि देह में मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो इतने पशुओं का वध करता था जिससे जंगल में सारे पशु लहू लुहान मर रहे थे, तड़प रहे थे, लेकिन उसको आनंद आता था। पशुओं को मारता था और उसको आनंद आता था, क्योंकि वो देहात्म स्तर पर था। वो नहीं जानता था कि सब में जीव है, जीव को मारना पाप है। जीव को मारना पाप है। व्यास देव कहते हैं अष्टादश पुराण से व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। पाप करने से मैंने जीव हिंसा करने से चार महान पाप है। जीव हिंसा करना, नशा करना, अवैध संबंध रखना, जुआ खेलना, ये चार महान पाप है। तो जीव हिंसा करना भी पाप है। तो मृगारी वही करता था, पशुओं का वध करता था, और वो जानता नहीं था कि ये पाप है, इसमें भी जीवात्मा है। जैसे क्रिश्चियन लोग पशु वध करते हैं, वो बोलते हैं कि इसमें जीवात्मा नहीं है। वो सोचते हैं केवल मनुष्य में ही जीवात्मा है, अन्य प्राणियों में जीव नहीं है। वो सोचते हैं कि इसको मारना ही, मारकर खा जाना ही हमारा है। तो मृगारी भी यही समझता था कि ये पशु हैं, इनको मारना ही और खा जाना यही पुरुषार्थ है। तो पशुओं को मारता था तो उसको बहुत आनंद आता था। अधफड़ जीव, अधमर जीव जब धड़फड़ करे तबे ता आनंद मोरे अंतर बाढ़े। नारद जी बोले क्यों ऐसा करते हो? तो बोला कि हमको बहुत आनंद आता है पशु जब मरते हैं तड़प करके। तो नारद जी जब बताए, यही पुरंजन जैसा ही इतिहास सुनाए कि देखो इसका क्या तुम्हें सजा भोगना पड़ेगा। जब विस्तार से नारद जी उपदेश किए तो मृगारी डर गया, जैसे पुरंजन प्राचीन पर ही डर गए और नारद जी का भक्त बन गया। तो इस उपाख्यान से, पुरंजन उपाख्यान का उद्देश्य है जीव को पाप से निकालना। जो संसार के भोग में जो लोग आसक्त हैं उनको विषय भोग से निकाल करके कृष्ण चेतना में लगा देना, यही पुरंजन उपाख्यान का उद्देश्य है। हरे कृष्ण। टाइम हो गया ना? कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न कर सकते हैं आप, पूछिए।
हम सब पुरंजन है, प्रभु जी कर रहे हैं, और हमारी जो दुर्बुद्धि है, जो विषयी बुद्धि है, वो वही पुरंजनी है। जो असत बुद्धि है वो पुरंजनी जीव को इधर उधर ले जाती। जैसे स्त्री अपने पति को डिमांड करती है, यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज तो कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास 10 पत्नियां हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां अपने अपने डायरेक्शन में खींचती है। बहवा सपत्न देहपतिम लुलंती, जैसे जीव की जो 10 इंद्रियां हैं अपने अपने ओर खींचती हैं, जीवा अपने कान अपने तरफ, तो वैसे ही जैसे एक पुरुष की 10 स्त्रियां हैं तो अपने अपने तरफ खींचती हैं, अपना अपना डिमांड करती हैं, तो वो परेशान हो जाता है। तो 10 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और इसके ऊपर भी जो दुर्बुद्धि है, जो विषयी बुद्धि है, वो जीव को हमेशा नचाती रहती है, चारों तरफ नचाती रहती है। उससे मुक्ति कब होगी? जब उसे कृष्ण भावना भावित बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। ऐसी बुद्धि जब प्राप्त होगी तो मुक्त हो। जैसे किसी की स्त्री सती नारी है, अगर सत नारी है, सती नारी है, तो पुरुष का उद्धार हो जाता है। असत नारी है तो वो भव बंधन में चला जाता है। जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऋण कर्ता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडिता। अगर कोई पिता है, ऋण करता है, बहुत कर्ज कर लिया है, तो उसका दंड किसको भुगतना? पुत्र को भुगतना पड़ता है। और माता च व्यभिचारिणी, माँ है शादी हो फिर एक शादी कर लेती है व्यभिचारिणी, तो भी कष्ट देती है। माता च व्यभिचारिणी, पुत्र है पौत्र है फिर भी वो व्यभिचार में लिप्त है, तो ऐसी माँ शत्रु है। और रूपवती भार्या शत्रु, स्त्री है बहुत सुंदर है और असत बुद्धि असती है, तो भी शत्रु है, अपने पति को भी मार देती है। और पुत्र शत्रु अपंडिता, और पुत्र है मूर्ख है, मूर्ख पुत्र भी शत्रु है। चाणक्य पंडित लिखते हैं कि पुत्र हो तो सद्बुद्धि वाला हो, अगर मूर्ख होगा तो कष्ट देता है। जैसे धुंधकारी, धुंधकारी जो है अपने माता पिता को इतना सताया कि माँ जो है मर गई कुएं में कूद कर। अजामिल, वो भी अपने माँ बाप को मार करके घर से निकाल दिया था। तो जो बुद्धि है स्त्री है, अगर स्त्री सत बुद्धि वाली है, सत नारी है, सावित्री की तरह, अनसुईया की तरह, तब उसका कल्याण हो जाता है। अगर असत बुद्धि है तो जीव को ले जाती है, कहाँ? विषय के गर्त में डाल देती है। तो जो बुद्धि कृष्ण चेतना से युक्त है वो ठीक है, ठीक है।
मनुष्य के मन में अच्छे बुरे विचार रहते हैं और वैसा ही उसके जीवात्मा में अच्छे बुरे कर्म का स्टॉक होता है। तो जीवात्मा की व्याख्या की गई है कि वो अपने बाल के टोच का 10,000वां भाग जितना सूक्ष्म है। तो इतने सूक्ष्म भाग में इतने जन्मों जन्म के अच्छे बुरे कर्म कैसे रह सकते हैं? क्योंकि वो भी तो सूक्ष्म है, उसको भी तो कुछ जगह चाहिए रहने के लिए, अच्छे बुरे कर्मों को फलित होने के लिए। तो उतना माइंड तो समझो बड़ा है, लंबा है अपना साइज, जीवात्मा इतना छोटा सा है, तो उसमें अच्छे बुरे कर्मों का स्टॉक कैसे रह सकता है?
रूपा जी लिखते हैं कि जीव अणु अणियान महतो महियान, ये वही जीवात्मा हाथी को भी चलायमान करता है, चींटी को भी चलायमान करता है, बरगद के बीज में भी वो जीव है और विशाल वृक्ष का रूप भी ले लेता है। तो कार्यानुसार जीव जो है अपना विस्तार भी करता है। तो सूक्ष्म से भी, जैसे भगवान के विषय में कहा जाता है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतम है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वायर के अंदर गुप्त रूप में है, लेकिन वही बल्ब के रूप में कितना अपना कार्य विस्तार करता है। बिजली वायर के अंदर प्रवाहित होता है लेकिन अदृश्य रूप में,
लेकिन बड़े बड़े मोटर को भी चलायमान करता है, तो उसका वो कार्य रूप में विस्तार होता है। तो प्राण वायु जो है सूक्ष्म है, लेकिन उसका कार्य के रूप में कभी कभी एक्सपेंशन होता है। जैसे बरगद के बीज में भी जीव है, लेकिन वही जीव का विस्तार जब होता है तो विशाल वृक्ष का रूप लेता है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, वो चींटी से भी अणु है और परमाणु का भी रूप धारण कर लेता है। वो महान से भी महानतम है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। इसलिए आत्मा के विषय में जानना, कहना, उसका वर्णन करना बड़ा आश्चर्यमय है। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है और बड़ा भी है। जैसे आप बिजली से कई कार्य करते हैं, बर्फ भी जमाते हैं, अग्नि भी जलाते हैं, बहु प्रयोग है बिजली का, ट्यूबलाइट भी जलाते हैं, बड़ा बड़ा मशीन भी चलाते हैं। जैसा जैसा वैसा रूप लेता है, ट्यूबलाइट में ट्यूबलाइट के आकार का हो जाता है, और गीजर में वहाँ अलग फंक्शन करता है, अलग आकार में क्वाइल के अंदर अलग आकार में कार्य करता है। तो जीव जिस देह में जाता है उस अनुरूप कार्य करता है, लेकिन सूक्ष्म है और विस्तार भी रूप में भी है, उसका भिन्न भिन्न कार्य है। जैसे पानी गिलास में डालेंगे तो गिलास की आकृति का हो जाता है, बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी की आकृति का हो जाता है, लोटा में डालेंगे तो लोटा की आकृति का हो जाता है। तो संग के अनुसार उसका कार्य गुण स्वभाव बदलते रहता है। जैसे सुअर में अलग गुण में आता है, लेकिन वो सूक्ष्म भी है और महान भी है, अन्योन्याश्रय संबंध है। टाइम हो गया ना, समय हो गया है, खत्म करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की आपकी जय।